आस्तिक वहां पर उठकर बैठ गया था और सब उसे हैरानी से देख रहे थे। आस्तिक ने मुस्कुराते हुए अरुणिमा को देखा और प्यार से कहा, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन अरुणिमा के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो एकदम मुंह खोले हुए आस्तिक को देख रही थी। वो इतनी मार खाने के बाद भी बिल्कुल ठीक है। यहां तक कि मीरा और देव के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। देव ने गुस्से में आस्तिक को देखते हुए कहा, तो तुम होश में आ चुके थे और बस नाटक कर रहे थे। कभी कभी शिकारी को पकड़ने के लिए खुद शिकार बनना पड़ता है। माफिया होकर इतना भी नहीं पता तुम्हें, आस्तिक ने एकदम व्यंग्यपूर्ण अंदाज में देव को देखकर कहा। देव गुस्से में उसे घूर कर देखता है। आस्तिक आराम से अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखता है और अपने दोनों हाथ सोफे पर फैलाते हुए कहता है, तो क्या कहते हो मिस्टर रशियन माफिया, थोड़ी अकेले में बात हो जाए, मैन टू मैन, टॉक टू टॉक? तुम ऐसा कुछ भी, अरुणिमा ने बस इतना ही कहा था कि आस्तिक उसे तुरंत देखते हुए कहता है, डोंट वरी जान, तुम्हारे नए दोस्त और पुराने आशिक को जान से नहीं मारूंगा मैं। अगर ऐसा करना होता तो यहाँ पर अकेले नहीं बैठा रहता। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ और किस हद तक कर सकता हूँ। उसके बाद भी तुम्हारा दोस्त और उसका परिवार सही सलामत है, तो समझ लो कि इस वक्त मेरा कुछ भी करने का इरादा नहीं है और भविष्य की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। वो तो मिस्टर रशियन माफिया के इरादे बताएंगे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, देव गुस्से में आस्तिक को देखते हुए कहता है। ठीक है मिस्टर रायचंद, करते हैं एक दूसरे के साथ मर्दों वाली बातें और देखता हूँ कि कितनी पावर है तुम में। ये कहकर देव अपना हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाता है और उसे बाहर चलने का इशारा करता है। आस्तिक ने उसे घूरते हुए देखकर कहा, तुम्हारे घर में जगह नहीं है क्या? देव ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे घर में बहुत जगह है, लेकिन इसके साथ ही मेरे घर में मेरे बच्चे भी हैं और मैं अपने काम का असर अपने बच्चों पर नहीं आने देता हूँ। इसीलिए तुम्हें जो भी बात करनी है बाहर आकर करनी होगी। मंजूर है तो ठीक है, वरना निकलो मेरे घर से। आस्तिक बहुत ही स्टाइल में खड़ा होता है और देव को देखते हुए कहता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर में रुकने का। तुम्हारे पास मेरा एक कीमती सामान है, वो मेरे पास आ जाए तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन लगता है तुम उसे देने के इरादे में नहीं हो, इसीलिए अपनी ही चीज़ को मुझे तुमसे छीनना पड़ेगा। आस्तिक देव के करीब आते हुए उसे एक डेंजरस लुक देता है और अगले ही पल वो चलता हुआ गेट की तरफ बढ़ने लगता है। देव भी गुस्से में उसे देखते हुए डोर की तरफ बढ़ रहा था। अरुणिमा और मीरा दोनों हाल में ही खड़ी थीं। अरुणिमा डर रही थी, लेकिन मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा। अरुणिमा ने घबराते हुए नामे सिर हिलाया और कहा, नहीं मीरा, तुम आस्तिक को नहीं जानती हो। अगर उसने इतना सब कुछ होने दिया है, मतलब कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, वरना आस्तिक आराम से बैठकर बात करने वालों में से नहीं है। अरुणिमा की बात सुनकर अब मीरा भी कुछ कुछ घबरा रही थी और उसने बाहर गेट की तरफ देखा। उनके मेंशन से बाहर बिल्कुल गार्डन के कोने में एक छोटा सा आउटहाउस बना था। आस्तिक को लेकर देव आउटहाउस में जाता है और जैसे ही वो दोनों आउटहाउस के अंदर दाखिल होते हैं, देव एकदम से दरवाजा बंद कर देता है। आस्तिक ने उसे घूमते हुए देखा और अपने सिर को सहलाते हुए बोला, क्या करने का इरादा है? सोच तो ये है कि तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन अरुणिमा को पसंद नहीं आएगा, इसीलिए तुमसे बात कर रहा हूं। कहो, वो सब करने का मकसद क्या है तुम्हारा? देव ने सीधा सवाल किया। तो आस्तिक उसके सामने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मकसद है मेरी बीवी को अपने पास रखने का? आस्तिक ने सीधा सवाल किया और देव उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, क्योंकि वो मेरी पुरानी दोस्त है। वो कॉलेज के दिनों में मेरी दोस्त थी और उसकी और मीरा की दोस्ती भी उतनी ही पुरानी है। लेकिन आस्तिक उसकी बातें तो सुन रहा था, पर जैसे कि उसके पास और भी सवाल थे, उसने तुरंत दूसरा सवाल देव से पूछते हुए कहा, ठीक है तो तुम मेरी बीवी के कॉलेज के दोस्त हो, चलो अच्छी बात है, कॉलेज के दोस्त एक बार फिर से मिलकर पुरानी बातें ताज़ा कर रहे हैं, लेकिन इन सब में तुम्हारी बेटी कहाँ से बीच में आती है? तुमने अपनी बेटी का नाम मेरी बीवी के नाम पर क्यों रखा हुआ है? देव की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं और वो गुस्से में आस्तिक को देख रहा था। उसने आस्तिक के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन आस्तिक डेविल स्माइल करता हुआ देव की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, मिस्टर देव बख्शी, अरुणिमा के साथ बेंगलुरु में उसके कॉलेज में पढ़ते थे। तुम्हारी बीवी उस वक्त तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन कॉलेज के बाद तुमने उसे शादी कर ली और साथ ही साथ एक मामूली इंसान से एक ही साल के अंदर इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। लेकिन ये बिजनेस तुम्हें तुम्हारी काबिलियत से नहीं बल्कि रशियन माफिया की मेहरबानी से मिला है। तुम यहाँ पर रशियन माफिया के कॉटलर का काम कर रहे हो, देश में इलीगल वेपन्स और गोल्ड की स्मगलिंग करना। कुछ ही सालों में तुम्हारा नाम शहर के रईस बिजनेसमैनों में आने लगा, लेकिन वो सब सिर्फ एक दिखावा था ताकि रशियन माफिया अपना गैरकानूनी काम तुम्हारी आड़ में पूरा कर सके। उसके बाद तुम्हारी बीवी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और तुम्हारे अंदर अपने कॉलेज का प्यार तब भी जिंदा था, इसीलिए तुमने अपनी बेटी का नाम अरुणिमा रखा। पर वो नाम सिर्फ नाम तक ही सीमित था। तुम अपने बच्चों को, अपनी बीवी को कभी भी अपने काम के बीच में नहीं आने देते हो। तुम्हारा काम पूरी तरह से प्राइवेट है, लेकिन जब इतने सालों बाद तुमने अपने प्यार को फिर से अपने सामने देखा तो तुम्हारे अरमान फिर से जाग उठे और तुम उसे अपने पास रखने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हो। इसीलिए जब तुम्हें ये पता चला कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, तब भी तुमने उसे मेरे साथ नहीं जाने दिया। मैं सच कह रहा हूँ ना मिस्टर देव बख्शी, 5 मिनट में मैं तुम्हारे जीवन का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। क्या तुम्हारे पास अपनी सफाई में कुछ कहने लायक है? देव उसे गुस्से में देख रहा था, तभी उसके फोन का नोटिफिकेशन बजता है। उसने चुपचाप आस्तिक से अपने कदम पीछे लिए और अपना फोन निकाल कर देखा। वो उसके किसी खास आदमी का मैसेज था जिसने इस वक्त आस्तिक की डिटेल भेजी हुई थी। और जैसे ही देव ने वो सब पढ़ा उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो तुरंत पलटकर आस्तिक की तरफ देखते हुए कहता है, आस्तिक रायचंद द माफिया बीस्ट।